एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, तो आज बात करते हैं एक ऐसे उपन्यास की जिसका नाम है रैग टाइम।
जी, ईएल डेक्टरो का लिखा हुआ।
हाँ, डॉक्टरो अमेरिकी साहित्य के कह सकते हैं एक जादूगर हैं। वो इतिहास को सिर्फ बताते नहीं बल्कि उसे एक नए सिरे से रचते हैं।
बिल्कुल, और रैग टाइम इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये 1975 में लिखा गया था, लेकिन कहानी हमें ले जाती है 20वीं सदी की शुरुआत के अमेरिका में।
और वो भी कोई सीधा साधा चित्रण नहीं है। डॉक्टरों की जो खासियत है वो असली ऐतिहासिक किरदारों को, जैसे हेनरी फोर्ड या हैरी हुडिनी, अपने काल्पनिक किरदारों के साथ ऐसे मिला देते हैं
कि सच और कल्पना के बीच की लकीर ही मिट जाती है।
सही कहा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये उपन्यास अमेरिकन ड्रीम यानी अमेरिकी सपने के वादे की पड़ताल कैसे करता है। और ये कहानी खुलती है तीन बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं के टकराने से।
हाँ, ये तीन दुनियाएं मानो तीन अलग अलग धाराएं हैं जो एक ही महासागर में मिल जाती हैं। पहली दुनिया है न्यू रोशेल के एक अमीर सफेद परिवार की।
एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट, मतलब वो लोग जिनके लिए अमेरिका बना था।
जी, वो व्यवस्था के प्रतीक है। और देखिए, लेखक उन्हें उनके नाम से नहीं, रिश्तों से बुलाता है। पिता माँ, माँ का छोटा भाई।
जिससे वो कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरा ढांचा हो।
बिल्कुल। दूसरी दुनिया है अप्रवासियों की। लातविया से आया एक यहूदी कलाकार ताते और उसकी बेटी। वो उन लाखों लोगों की उम्मीदों और संघर्षों का चेहरा है जो एक नई जिंदगी की तलाश में अमेरिका आए थे।
और
फिर आती है तीसरी दुनिया, जो मेरे हिसाब से इस उपन्यास का दिल है।
हाँ, उसकी धड़कन भी।
ये दुनिया है हार्लेम के एक प्रतिभाशाली रैग टाइम पियानो वादक कोल हाउस वॉकर जूनियर और उसकी मंगेतर सारा की।
एक स्वाभिमानी कामयाब अश्वेत इंसान जो उस अमेरिकी सपने पर अपना हक जताना चाहता है। और यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। सवाल ये नहीं है कि ये तीन दुनियाएं हैं, सवाल ये है कि जब ये आपस में टकराएंगी तो क्या होगा।
और वो टकराव शुरू होता है एक बहुत ही अप्रत्याशित जगह से, न्यू रोशेल वाले परिवार के बगीचे से।
अच्छा,
कहानी की शुरुआत में ये परिवार एक बहुत अनुशासित, मतलब घड़ी की सुइयों पर चलने वाली जिंदगी जी रहा है।
पिता का कारोबार भी देशभक्ति से जुड़ा है, वो झंडे बनाते हैं।
जी, सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन फिर पिता एक समुद्री अभियान पर चले जाते हैं और उनकी गैर मौजूदगी में माँ एक ऐसा कदम उठाती हैं जो उनकी पूरी दुनिया को हिला देता है।
उन्हें अपने बगीचे में वो बच्चा मिलता है।
हाँ, जमीन में गड़ा हुआ एक नवजात अश्वेत बच्चा। और वो न सिर्फ उसे बल्कि उसकी माँ सारा को भी अपने घर में पनाह दे देती हैं। ये एक पारंपरिक पत्नी का पहला स्वतंत्र और शायद विद्रोही कदम था।
और इसी के साथ एंट्री होती है कोल हाउस वॉकर जूनियर की,
नी चमचमाती मॉडल टी फोर्ड कार में हर रविवार सारा से मिलने।
वो कार, मुझे लगता है कि वो कार इस उपन्यास का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है। वो सिर्फ एक गाड़ी नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
वो कोल हाउस की कामयाबी, उसकी आधुनिकता का, उसके स्वाभिमान का एक चलता फिरता ऐलान है।
उस दौर में एक अश्वेत आदमी जो न सिर्फ अमीर है बल्कि पूरी शान से उसका प्रदर्शन कर रहा है, ये नस्लवादी समाज के लिए पचाना बहुत मुश्किल था।
बिल्कुल।
और कोल हाउस का व्यक्तित्व भी बहुत विनम्र लेकिन दृढ़। उसका संगीत, उसका सलीका, उस घर के लोगों पर, खासकर माँ और उनके छोटे भाई पर एक गहरा असर डालता है।
वो धीरे धीरे उस परिवार का हिस्सा बनने लगता है।
हाँ, लेकिन इसी दौरान शहर के दूसरे कोने में ताते और उसकी बेटी गरीबी में जी रहे हैं। वो सड़कों पर लोगों के चित्र बनाकर गुजारा कर रहा है।
तो दोनों ही किरदार अमेरिकी सपने को जी रहे हैं।
बराबर है,
लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग हैं।
अलग हैं।
एक उसे सम्मान से हासिल करना चाहता है
और दूसरा चुपचाप सिस्टम से बचकर अपना रास्ता बना रहा है।
इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो तब आता है जब कोल हाउस अपनी कार से गुजर रहा होता है
और विली कॉन्क्लिन नाम का एक लोकल फायर चीफ और उसके नस्लवादी साथी उसे रोकते हैं। वे उसकी महंगी कार का मजाक उड़ाते हैं, उसे अपमानित करते हैं और उसकी गाड़ी को गंदा कर देते हैं। ये लगती तो एक छोटी सी घटना है, पर असल में ये पूरे उपन्यास का केंद्र है।
ये कोल हाउस के लिए एक परीक्षा बन जाती है ना। वो एक पढ़ा लिखा इंसान है जिसका अमेरिकी न्याय व्यवस्था में पूरा यकीन है।
पूरा यकीन, वो बदला नहीं चाहता, वो बस न्याय चाहता है। उसकी मांगे भी बहुत सीधी हैं।
कि मेरी कार को पहले जैसा साफ किया जाए और मुझसे माफी मांगी जाए।
बस, वो पुलिस के पास जाता है, वकीलों से मिलता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। सिस्टम के लिए एक अश्वेत आदमी का सम्मान कोई मायने नहीं रखता।
और यहीं पर डॉक्टर एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, वो दिखाते हैं कि नस्लोवाद सिर्फ विली कॉन्क्लिन जैसे कुछ बुरे लोगों की सोच नहीं है, ये
पूरा का पूरा सिस्टम है।
हाँ,
पुलिस, अदालत, नौकरशाही, ये सब मिलकर एक ऐसी दीवार खड़ी कर देते हैं जिसे कोलहाउस जैसा शरीफ आदमी पार नहीं कर सकता। उसका यकीन धीरे धीरे टूटने लगता है।
और जब न्याय के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब त्रासदी होती है सारा।
जो कोलहाउस को इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकती, वो खुद कुछ करने का फैसला करती है।
वो एक चुनावी रैली में पहुंचाती है
जी, उपराष्ट्रपति से गुहार लगाने। लेकिन उस भीड़ में एक गलतफहमी के चलते सुरक्षा गार्ड उसे एक हमलावर समझ बैठते हैं।
ओह,
और उस धक्का मुक्की में लगी चोटों से उसकी मौत हो जाती है।
एक मासूम जान जो सिर्फ इंसाफ मांग रही थी, उसी व्यवस्था की भेंट चढ़ जाती है।
सारा की मौत वो लम्हा है, अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कोलहाउस के लिए भी और उपन्यास के लिए भी।
यहाँ से एक शरीफ संगीतकार एक क्रांतिकारी में बदल जाता है, उसका दुख गुस्से में बदल जाता है।
और उसका यकीन इस नतीजे पर पहुंचता है कि अमेरिकी समाज सिर्फ एक ही भाषा समझता है, हिंसा की भाषा।
और वो उन फायर स्टेशनों को जलाना शुरू कर देता है जहां से उसके अपमान की शुरुआत हुई थी।
और कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। माँ का छोटा भाई, जो अपनी अमीर और मकसदहीन जिंदगी से ऊब चुका है, वो कोलहाउस की कहानी से बहुत प्रभावित होता है।
उसे अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई में एक सच्चाई दिखती है
जो उसे अपनी दुनिया में कभी नहीं मिली। वो अपनी बारूद बनाने की महारत के साथ कोलहाउस के दल में शामिल हो जाता है।
एक अमीर सफेद नौजवान एक अश्वेत क्रांतिकारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ये दिखाता है कि अन्याय कैसे अनपेक्षित गठजोड़ बना सकता है।
डॉक्टर्स यहाँ कोलहाउस को एक विलेन की तरह नहीं दिखाते,
नहीं, वो उसे एक ट्रेजिक हीरो की तरह पेश करते हैं, एक ऐसा नायक जिसे हालात ने खलनायक बना दिया।
वो हमसे सवाल पूछते हैं,
है ना?
बिल्कुल, कि जब एक समाज किसी व्यक्ति के लिए न्याय के सारे रास्ते बंद कर दे तो क्या उसके पास हिंसा के अलावा कोई और रास्ता बचता है?
और कहानी का क्लाइमैक्स, वो जेपी मॉर्गन लाइब्रेरी पर कब्जा।
हाँ, जब कोलहाउस और उसके साथी उस मशहूर लाइब्रेरी पर कब्जा कर लेते हैं और धमकी देते हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गईं तो वो उसे उड़ा देंगे।
ये एक सांकेतिक हमला है, वो सिर्फ एक इमारत पर कब्जा नहीं कर रहे हैं,
वो पश्चिमी सभ्यता, इतिहास और संस्कृति के केंद्र पर कब्जा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस इतिहास में हमारी कहानी को भी शामिल करो, हमारे दर्द को भी देखो।
इस बीच पिता अपने अभियान से लौटते हैं और अपने शहर और परिवार को इस उथल पुथल में पाकर हैरान रह जाते हैं।
उनकी पुरानी व्यवस्थित दुनिया बिखर चुकी है।
अंत में एक समझौता होता है, कोलहाउस की कार उसे वापस कर दी जाती है।
वो अपने साथियों को सुरक्षित जाने देता है, लेकिन जैसे ही वो खुद निहत्ता बाहर आता है, पुलिस उसे गोलियों से भून देती है।
कोलहाउस की मौत के साथ उसका संघर्ष खत्म हो जाता है, लेकिन उपन्यास नहीं।
नहीं, उपन्यास का अंत एक बिखराव और एक नई शुरुआत को दिखाता है। न्यू रोशेल का वो पुराना परिवार, वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। पिता की मौत लुसिटानिया जहाज के डूबने से होती है। छोटा भाई मैक्सिकन क्रांति में मारा जाता है।
पुरानी व्यवस्था का प्रतीक वो परिवार इतिहास बन जाता है।
हाँ, लेकिन इसी राख से कुछ नया जन्म लेता है। माँ अब पूरी तरह से एक स्वतंत्र महिला है। वो ताते से शादी कर लेती है, जो अब फिल्मों का एक सफल निर्देशक बन चुका है।
ताते का सपना सच हो गया।
हाँ, और उपन्यास का आखिरी सीन बहुत मार्मिक है। एक नई मिलीजुली फैमिली ट्रेन में बैठकर कैलिफोर्निया जा रही है। इस परिवार में माँ है, ताते हैं, दोनों के बच्चे हैं
और कोलहाउस का अनाथ बेटा भी है।
जी, ये एक नए, ज्यादा जटिल और बहुसांस्कृतिक अमेरिका का प्रतीक है।
और ये अंत हमें उपन्यास के सबसे बड़े सवाल पर वापस ले आता है। अमेरिकी सपना, ताते के लिए सपना काम कर गया क्योंकि उसने सिस्टम से टकराने की बजाय उसके समानांतर अपनी एक दुनिया बना ली,
सिनेमा की दुनिया। लेकिन कोलहाउस, जिसने सिस्टम के नियमों के हिसाब से चलकर सम्मान पाना चाहा, उसे
कुचल दिया गया।
तो जिन गुणों ने तातेम को सफल बनाया, उसकी रचनात्मकता, उसकी नई सोच, उन्हीं गुणों ने कोलहाउस को सिस्टम के लिए खतरा बना दिया।
उसकी सफलता ही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई।
उपन्यास की शैली भी कमाल की है। लेखक की भाषा बहुत शांत है, लगभग एक रिपोर्टर जैसी।
हाँ, वो भयानक से भयानक घटनाओं को भी बिना किसी भावुकता के बयान करती हैं, जिससे उनका असर और भी गहरा हो जाता है।
और उपन्यास का ढांचा, वो बिल्कुल रैगटाइम संगीत जैसा है।
एक हाथ से पियानो पर एक स्थिर सदी भी धुन बज रही है,
जो उस दौर का मुख्य धारा का समाज है, और दूसरा हाथ एक तेज, अप्रत्याशित और बेचैन करने वाली धुन बजा रहा है,
जो कोल हाउस, अप्रवासियों और उन सभी लोगों की कहानी है जिनकी आवाज को दबा दिया गया था।
आखिर में ही उपन्यास हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ बड़ी घटनाओं और तारीखों का लेखा जोखा नहीं हो।
इतिहास व्यक्तिगत गरिमा और न्याय के लिए लड़ी गई अनगिनत लड़ाइयों की कहानी है।
और न्याय और बराबरी का ये संघर्ष आज भी उतना ही सच है जो रैगटाइम को सिर्फ एक ऐतिहासिक उपन्यास नहीं
बल्कि
हर दौर के लिए प्रासंगिक एक कालजयी कृति बनाता है।
उपन्यास का अंत सिनेमा के जन्म के साथ होता है, जहां ताते फिल्में बना रहा है। डॉक्टोरो शायद ये कह रहे हैं कि अमेरिका की अगली कहानी सियासतदान या उद्योगपति नहीं, बल्कि वो लोग लिखेंगे जो इस देश की उलझी हुई बहुसांस्कृतिक सच्चाई को पर्दे पर उतार सकें।
ये सोचने वाली बात है कि आज के सोशल मीडिया और बिखरे हुए नैरेटिव के दौर में अमेरिका की कहानी कौन कह रहा है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।